Om Shanti. Good afternoon. अभी का जो हमारा सत्र है ये बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन है जिसमें आपकी इनपुट्स के आधार से आपकी राय के आधार से हमारी दोनों दीदियां आध्यात्मिक ज्ञान की बातें हमारे से शेयर करेंगी और इसीलिए हम आदरणीय दिव्या बहन का और आदरणीय राज बहन का बहुत ही तहे दिल से स्वागत करते हैं। बहनें गुलदस्ते के द्वारा दोनों बहनों का स्वागत भी करेंगी और बहनों के स्वागत के साथ साथ हम मंच से आप सभी का भी इस सत्र में बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पर ही इस सत्र की सफलता है। तो बहनें हमारी बहनों का वेलकम कर रही हैं। सत्र में हम ये देखेंगे कि कैसे हमारे छोटे छोटे जो कर्म होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व की ही पहचान बन जाते हैं। हम शायद इसको जान पाए या नहीं भी जान पाए लेकिन हमारे एक्शंस लोगों पर हमारे व्यक्तित्व की पर्सनालिटी की बहुत बड़ी छाप छोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हम सड़क पर अपना व्हीकल चला रहे हैं, एक टर्न आता जहां आपको भी टर्न लेना है उस लेन पर और सामने से आने वाले व्हीकल को भी उसी लेन में टर्न लेना है। उस समय हमारे पास दो ऑप्शंस होते, ऑप्शन वन पहले मैं, ऑप्शन टू पहले आप। और जो निर्णय हम लेते हैं वो निर्णय दर्शाता है कि हमारी आखिर भी मनोवृत्ति क्या है। अगर हम पहले मैं करते तो हाँ शायद कुछ दो तीन मिनट तो हमने जीत लिए कि पहले हम उस लेन में चले गए, लेकिन सामने वाले ड्राइवर के मन पर और दूसरे जो सड़क पर चलने वाले यात्री हैं या दूसरे व्हीकल्स हैं उनके मन पर भी हमने एक छाप छोड़ी। हम सोच सकते हैं कि उनके मन पर हमने कौन सी छाप छोड़ी है। वो यही सोचेंगे कि पहले पहले मैं करते माना अपनी प्रायोरिटी को बड़ा करते। तो कुछ इसी प्रकार की बातों को हम आपके विचारों के जरिए देखना चाहते हैं। तो आप में से जो सभी मोबाइल्स यूज करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फोन पर यदि जैसे हमने नोटिसेस लगाए थे मेंटीमीटर ऐप डाउनलोड किया हो तो आप अभी उसको ओपन करेंगे और नहीं तो www.menti.com आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़े अक्षरों में टाइटल दिया हुआ है। तो सभी अपना मोबाइल हाथ में लेंगे क्योंकि इसके साथ ही ये सेशन की सफलता होगी। अपना मोबाइल साथ में लेंगे, अगर मेंटीमीटर ऐप डाउनलोड किया है तो ओपन करेंगे, अन्यथा www.menti.com उसको ओपन करेंगे। आप ऊपर में टाइटल में देख रहे हैं menti.com, एड्रेस बार में आपको इसे टाइप करना है। किया, ओपन हुआ, यस। कितनों का हो गया जरा हाथ उठाएंगे, रेडी कितने हैं और बाकी अभी कर रहे हैं, आसपास एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। कोई भी ब्राउजर ओपन करके www.menti.com ओपन करेंगे। अभी रेडी, एक बार फिर से शो ऑफ हैंड्स देंगे, रेडी? नहीं रेडी, अच्छा ठीक है, कर लीजिए, एक मिनट और देते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत सिंपल होगा, इसमें कुछ प्रश्न होंगे, आप उत्तर देंगे और दीदियां फिर उसकी राय हमको देंगे। जो लोग वहां पहुंचे हैं, पहुंचे, यस, आगे बढ़े, क्या पूछ रहा है, कुछ कोड पूछ रहा है? हाँ, अभी एक कोड पूछ रहा है, तो आपको हम कोड बताते हैं, वो कोड आप उस पे एंटर करेंगे, वो कोड है, ध्यान से सुनेंगे, 92, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं, 92454, 92454। अभी जो वहां पर पहुंचे, आपको अपने फोन में मोबाइल डेटा ऑन रखना होगा जब आप ये कर रहे हैं। पहुंचे, कितने भाई बहने पहुंचे पहले प्रश्न तक? राइट। तो अब हम चाहेंगे कि ये जो प्रश्न दिए गए हैं, ये प्रश्न ऐसे हैं कि जिसमें आपको, आप जो करते हैं वो राय देनी है, और फिर हम इसको आपस में मिलकर अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, हमारे पास उत्तर भी आने लगे हैं, मैं प्रश्न रीड करती हूं, जब तक सभी उत्तर भी उसका नोट करेंगे। पहला प्रश्न है, ड्राइव करते समय आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका मोबाइल रिंग होता है, फोन आता है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? ऑप्शन वन, ड्राइव करते हुए आप फोन रिसीव कर लेते हैं और पूरी बात भी कर लेते हैं। ऑप्शन टू, आपके फोन पर आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको कोई भी एक ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट करना है, क्या होना चाहिए वो नहीं सिलेक्ट कीजिएगा, जो हम करते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर सभी की ओपिनियन आ रही है। आप फोन रिसीव नहीं करते हैं, आप बाद में ड्राइव पूरी होने के बाद आप कॉल करते हैं उनको, जिनका आपको कॉल आ रहा था। ऑप्शन थ्री, आप गाड़ी साइड में खड़ी करके फिर बात करते हैं, क्योंकि आप समझते इम्पोर्टेंट होगा तो आप साइड में रोक लेते हैं, बात कर लेते। या ऑप्शन फोर, आप फोन रिसीव करते हैं चलाते हुए और आप बता देते हैं कि मैं गाड़ी चला रहा हूं। तो इसमें से आपका जो भी उत्तर है वो उत्तर आप, मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर रिजल्ट हमारे भी सामने हैं, आपके भी सामने हैं, सभी ने अपनी अपनी उत्तर दे दी है। जिन्होंने एंटर किया है वो हाथ उठाएंगे, जिन्होंने अपनी अपनी पोल्स एंटर कर दी हैं, और हमारे सामने भी हम देख रहे हैं बहुत बुलंदियों से जो थर्ड ऑप्शन है, हरा बार है, वो ऊपर उठ रहा, पर धीरे धीरे कई सच्चाई भी अपनी बता रहे हैं, और वो भी हम देख रहे हैं कि लगभग काफी हाई परसेंटेज के भाई बहने ये कह रहे हैं कि हम गाड़ी साइड में खड़ी करते हैं और हम फिर बात करते हैं। तो ऐसा जो करते हैं, एक तो सबसे पहले हम आप सभी को बधाई देते हैं, बहुत अच्छा, आप एक अच्छा कल्चर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं राइजिंग 103, 104, बहुत हाई परसेंटेज ऑफ वोट्स मिल रहे हैं। और इसके बारे में हम चारों उत्तर के पीछे हमारी मनोवृत्ति क्या है वो हम हमारी दीदियों से जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी भाई बहने ये भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम फोन रिसीव नहीं करेंगे, हम पीछे फोन करेंगे। तो इन दोनों के बीच में कैसे ये हमारे अपने जीवन के लिए बेहतर है और इसका महत्व क्या है, और हम जो करते हैं हम कैसे उसको इंस्पायर करें दूसरों को कि हम जो फॉलो करते हैं वो दूसरों को भी फॉलो करना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी बहनों को कि वो ये जो हम करते हैं इसका महत्व हमारे सामने रखे कि साइड में गाड़ी खड़ी करके फिर बात कर लेना कितना इम्पोर्टेंट है। तो दीदी आप बताएंगे इसके बारे में?
ओम शांति। आप सबने मोबाइल में जो चूज किया है, ये अभी आगे करने वाले हो वो चूज किया है कि अभी कर रहे हो वो किया है, महत्व की बात है ये कि भाई अच्छा है ये, इसीलिए हम साइड में ले जाएं गाड़ी और मोबाइल में बात करें, या तो ये सोच अच्छा लग रहा है, दो बातें हैं, लेकिन यही मान करके चलते हैं हम कि आप वैसा कर रहे हो। जिन जिन्होंने भी ये आंसर दिया है, माना वो कर ही रहे हैं और उस करने के बेनिफिट भी आप सबको जरूर होते ही हैं, और इनसे ये हमारे कर्म से क्या हमारी वृत्ति है वो समझ में आती है। एक तो ये है कि खुद की सेफ्टी, दूसरा है दूसरों की सेफ्टी, क्योंकि मोबाइल में बात करते करते हम ड्राइविंग करेंगे तो ड्राइविंग के साथ साथ उस बात में भी हमारा माइंड इन्वॉल्व होता है, और इसलिए ड्राइविंग करते हुए जो उस कार्य के प्रति फोकस होना चाहिए उसके परसेंटेज कम हो जाते हैं, और कई बार वो बात बहुत गंभीर हो, कुछ टेंशन वाली हो, तो और अधिक माइंड उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और जो हम ड्राइविंग कर रहे हैं उसके प्रति हमारा अटेंशन कम हो जाने के कारण एक्सीडेंट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और इसीलिए कि हम गाड़ी को साइड में ले जाएं और आराम से निश्चिंत होकर बात करें, कई बार शॉर्ट में बात होती है, कई बार वो विषय ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा समय हमें बात करनी पड़े फोन में, इसीलिए साइड में ले जाकर के बात करना ये तो अच्छा ही है, और उससे समझ में आता है कि हमारी भावनाएं, हमारी वृत्ति खुद की भी सेफ्टी के लिए है, औरों की सेफ्टी के लिए भी, औरों की भलाई के लिए, औरों की अच्छाई के लिए हमारे दिल में स्थान है, और उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट भी है। और कई बार बहुत व्यस्त हों तो फोन आता है तो हम कह करके कि बाद में बात करेंगे। जब ये मैं बात कह रही थी साइड में ले जाने की बात गाड़ी को, तो मेरे को एक सोच आपके मन में उठने वाले प्रश्न का मुझे प्रश्न उठा कि कई बार ट्रैफिक बहुत जाम होता है और हम उस लाइन में होते हैं कि साइड में जाना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसा भी होता है ना, तो उस समय पर शॉर्ट में हम बात करें कि अभी ट्रैफिक में है और अर्जेंट नहीं है तो हम थोड़ी देर में मौका मिले फिर गाड़ी को साइड में करके हम बात करेंगे। तो ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस हमारे लिए, औरों के लिए भी वो फायदेमंद है,
क्योंकि कहते हैं कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। जब हम रिजल्ट देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि कुछ लोगों ने सच्चाई से ये भी कहा कि वो फोन रिसीव भी कर लेते हैं, भले कम है, सबसे कम है, लेकिन मैं समझती हूँ ये वो भाई बहने हैं जिन्होंने सच्चाई से कहा कि हाँ हम फोन रिसीव करते हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं और हम पूरी बात भी कर लेते हैं। अब इसके पीछे भी कोई मनोवृत्ति है जिसको शायद हमें बदलने की आवश्यकता है। राजबहन, आपसे निवेदन है कि ऐसों के लिए कुछ हमको ऐसी टिप्स दें कि जो हम जान सके कि अगर मुझे परिवर्तन करना हो तो मैं इस आदत को कैसे चेंज करूं।
ओम शांति। जैसे हमने देखा, बहन से सुना और आप सबके भी विचार में यही राइट है कि साइड पे गाड़ी लेकर के ही बात करनी चाहिए, परंतु पहला जो प्रश्न था उसके बारे में अगर हम सोचें तो ये हमारा एक ओवर कॉन्फिडेंट नेचर है कि हम एक साथ सब कुछ कर सकते हैं, परंतु कई बार ऐसा होता है कि उस तरह से करना हमारे लिए काफी नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि दो कार्य जब हम एक साथ करते हैं तो कोई भी कार्य इतना सफल नहीं होता है। इसलिए ये जो कार्य करते हैं ड्राइविंग का, वो तो बहुत ही जिम्मेवारी का होता है, जिसमें बहन ने बताया कि हमारी भी सेफ्टी, सामने वाले की भी सेफ्टी, उसमें जरा भी हमारी भूल चूक बहुत बड़ा हमें नुकसान दे सकती है। इसलिए वैसा तो हमें कभी करना ही नहीं है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होने से हमारा और किसी और का नुकसान हो जाए, उससे तो हर बात को हम इतना अच्छी तरह से समझ करके ही चलें कि हम एक समय पर एक ही कार्य को अच्छी तरह से कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा जिम्मेवारी का कार्य रहता है। ये इस प्रकार का कार्य नहीं है कि हम खाना खाते अगर फोन पर बात कर लेते हैं तो ड्राइविंग करते भी कर सकते हैं, ये ऐसा कार्य नहीं है। इस पर पूरा ही ध्यान देने की जरूरत रहती है। इसलिए जो आदरणीय बहन ने बताया वही हमारे लिए सही होगा। दूसरा, जैसे हमने देखा कि उसमें भी काफी लोगों ने इसमें अपना सहमति दी है, अपना विचार दिया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अगर ये सोचें कि चलो फोन हम अपने स्थान पर पहुंच कर करेंगे, परंतु अगर सामने वाले व्यक्ति को अर्जेंट हमें कुछ पूछना हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए भी हम जिम्मेवार होते हैं। इसके लिए अगर हम ऐसा सोचते हैं कि अभी ये जरूरी नहीं है, उस पर भी हमें सोचना चाहिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति उसी समय कोई कार्य के लिए निर्णय लेना चाहता है और हमारी राय की उनको जरूरत है, तो उसको भी हमें जरूर महत्व देना चाहिए।
तो अपने ओवर कॉन्फिडेंस पर मैं ध्यान देना है, दीदी बता रहे थे तो उससे मुझे एक बात याद आई। हमने कभी पढ़ा था कि जब हम 1 किलोमीटर ड्राइव कर रहे हैं तो एवरी किलोमीटर जो हम गाड़ी चलाते हैं उसके अंतर्गत करीब करीब 5 से 6 कॉम्प्लेक्स डिसीजन हम ऑलरेडी अपने बुद्धि में ले रहे हैं। एवरी किलोमीटर कितनी स्पीड बढ़ाना है, कम करना है, गियर चेंज करना है, मोड़ना है, रुकना है, चलना है, रास्ता देना है, आदि आदि। तो जैसे ओवर कॉन्फिडेंस की बात बता रहे थे, ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स डिसीजंस हम ले रहे हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेते हुए हम कहें कि हम दूसरा कार्य भी कर सकते, तो जैसे दीदी ने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बात होती लेकिन साथ साथ सामने वाले की लाइफ की जो प्रायोरिटी है उसको भी हमें जरूर महत्व देना चाहिए। तो एक किसी ने कहा कि कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, लेकिन एक बहुत अच्छे लेख में किसी ने ये भी कहा था कि ड्राइविंग करते हुए हम केवल कॉम्प्लेक्स डिसीजंस नहीं लेते लेकिन हम मॉरल डिसीजंस, नैतिक डिसीजंस भी लेते हैं। इसीलिए ड्राइविंग के समय पर हमारी नैतिकता को महत्व देना जरूरी है, और जितनी हमारी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, जितने हमारे कार्य की इम्पॉर्टेंस प्रायोरिटी है, दूसरों की जीवन से ज्यादा कोई काम की प्रायोरिटी नहीं हो सकती। चलिए इससे हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो आप अपने फोन पर जैसे देखेंगे, रिफ्रेश हिट करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। बड़ा मजेदार प्रश्न है। आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको सामने स्पीड लिमिट का साइन पोस्ट दिखाई देता है। देखिए, कई बार स्पीड लिमिट 30, कई बार स्पीड लिमिट 40, कहीं स्पीड लिमिट 50, स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड होते हैं, और जब आप ऐसे स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड देखते हैं तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आपके मन में क्या सोच चलता? 3 ऑप्शंस हैं इस प्रश्न के लिए। इसमें भी जैसे दीदी ने पहले ही पूछा क्या करना चाहिए वो नहीं, लेकिन क्या करते हैं वो हमें लिखना है। तो आप क्या करते? ऑप्शन 1, क्योंकि पुलिस है या पुलिस नहीं है, कैमरा नहीं है तो ओवरस्पीड कर लेते हैं, फिर साइन बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं। ऑप्शन टू, पुलिस है, कैमरा है, फाइन भरना पड़ेगा, इसीलिए आप रूल को फॉलो करते हैं। ऑप्शन थ्री, नियम है ये और इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी समझ करके इसे फॉलो करते हैं। हमें वो लिखना है जो हम करते हैं, ना कि जो हमें करना चाहिए। बहुत ऑनेस्टली इसमें आपकी आइडेंटिटी तो डिस्क्लोज नहीं हो रही है, लेकिन हम सच्चाई बताएंगे तो हमें सच्चाई के बारे में कुछ बहुत अच्छे विचार भी मिल सकते हैं, और आप भी सामने देख रहे हैं, हम भी सामने देख रहे हैं। अगेन, बहुत हाई परसेंटेज भाई बहने ये कह रहे हैं कि क्योंकि नियम है तो हम जिम्मेवारी समझ कर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कई ये भी कह रहे हैं कि अगर हवलदार हो या स्पीड कैमराज लगे हो तो हम फॉलो कर लेते हैं, और कई सच्चाई से ये भी कह रहे हैं कि अगर नहीं तो फिर हम वो स्पीड भी कर लेते हैं। तो फाइन भरना पड़े इसीलिए फॉलो करना, और पुलिस नहीं है तो या कैमराज, स्पीड कैमराज नहीं है तो ओवर स्पीड कर लेना। अगेन, ये हमारे कंट्री का कल्चर बनता जाता, तो ऐसे में हम क्या करें कि किस प्रकार से हमें प्रेरणा मिले कि हम दूसरों के कार्य को भी सम्मान दें, क्योंकि जिसने भी वो वहां पर कैमरा लगाने के लिए बड़ा एफर्ट लिया है, या जो व्यक्ति खुद वहां खड़ा होकर के ट्रैफिक मैनिंग कर रहा है, उसके प्रति हमारा रिस्पेक्ट है, या हमारी अपनी जिम्मेवारी समझने के प्रति हमारा किस प्रकार से रिस्पेक्ट है। राज बहन, हम आपसे चाहेंगे कि इन बातों पर आप अधिक प्रकाश डालें। हम देख रहे हैं, रिजल्ट्स हमारे सामने हैं।
जैसे हम देख रहे हैं इसमें रिजल्ट क्या है, तो पहला जो कि हम समझते हैं कि हम वो करना चाहते हैं जिसके लिए हमें फोर्स किया जाए। फोर्स से अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो वो हमारी नेचर नहीं है, और जहां नेचर नहीं होती है वहां कुछ भी करना वो हमको धोखा देता है। और अगर इस तरह से हम फीस भरनी पड़ेगी या फिर हमको कोई दंड पड़ेगा उस रीति से हम करना चाहते हैं, तब एक डर है, डर है, फोर्स है, ये हमारे अंदर के अवगुण हैं। परंतु नियम का पालन करना है, ये हमारा सद्गुण है। तो सद्गुण सदा ही हमें सुरक्षा देता है, और अवगुण कहीं ना कहीं हमको धोखा देता है। एक बार ऐसे ही हम सफर पर थे, बहुत जरूरी स्थान पर समय पर पहुंचना था, ट्रैफिक में काफी लेट हो गया था, क्योंकि हम स्पीड लिमिट क्यों नहीं रखना चाहते, जबकि हमको ये बताया जा रहा है, साइन बोर्ड हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर ये लिमिट होनी चाहिए। हम इसलिए नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम जल्दी से अपने स्थान पर पहुंचे। तो ऐसे ही हमें भी उस दिन ऐसा ही जल्दी में पहुंचना था, और सिग्नल तोड़ करके कुछ लोग जा रहे थे। मैं जिस गाड़ी में बैठी थी वो भाई ने ईमानदारी से गाड़ी खड़ी कर दी, पर मेरे को बहुत जल्दी थी। मैं मन में सोचा कि सब तो जा रहे हैं, वैसे भी जा सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा हर्जा नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं दिख रहा था, लेकिन मैं मुख से बोल नहीं सके। ये एक अंदर युद्ध था, द्वंद था, परंतु मैं बोल नहीं सकी, क्योंकि मुझे भी ये नियम का पता था कि ऐसे सिग्नल तोड़ना ये राइट नहीं है, इसलिए मैंने बोला नहीं। भाई खड़े रहे, और फिर जैसे ही गाड़ी हमने आगे बढ़ाई तो जो लोग हमारे से आगे गए थे उनको आगे रोक लिया गया था, और उनकी इंक्वायरी चल रही थी, उनको दंड भी पड़ा होगा, उनका समय भी जा रहा था। तब हमको खुशी हुई कि हमारे अंदर का जो सद्गुण है उसने जीता, हमको जिताया। नहीं तो अगर हम भी गाड़ी आगे बढ़ा लेते, अगर मैं बोलती तो हमारा ड्राइवर भाई आगे बढ़ा सकता था गाड़ी, लेकिन मैंने बोला नहीं, इसलिए उन्होंने नियम का पालन किया। और जो मैं जल्दी से जाना चाहती थी, परंतु वो सफलता नहीं मिलनी थी, क्योंकि हमारी गाड़ी को भी रोका जाना था, फिर वहां टाइम भी जाना था, दंड भी पड़ना था, लेकिन हमारे अंदर का जो सद्गुण होता है वो अगर जीत जाता है तो हम सुरक्षित होते हैं, और अंदर का अगर अवगुण काम कर जाता है तो हम वहां पर दंड भोगते हैं, दुख पाते हैं। तो इसलिए नियम का पालन करना ही हमारे लिए सद्गुण है, जो हमारी सच्ची सुरक्षा है।
बहुत सुंदर तरीके से जीवन के गुणों के साथ आपने इसको जोड़ा, और चलिए थोड़ा सा और जीवन के गुणों की बात, सद्गुणों की बात हम दिव्या बहन से एक ब्रॉडर सेंस में भी समझें कि कई बार जैसे इस प्रसंग में दीदी ने बताया, हमें पता होता है कि सद्गुण क्या है, अवगुण क्या है, और द्वंद्व की बात भी बड़ी सच्चाई से दीदी ने बताई कि द्वंद्व चलता, कि एक तरफ सद्गुण और अवगुण की परख भी होती, फिर भी दिल करता कि हम ऐसा कर लें। तो ये कौन से ऐसे सोच हो या कौन से ऐसे संकल्प हो जो हमें सद्गुणों की राह पर चलने में हमेशा मदद करें, चाहे वो हम यात्रा सड़क पर कर रहे हैं, चाहे वो हमारी जीवन रूपी यात्रा में अन्य भी कई प्रसंग आते। तो मैं दिव्या बहन से कहूंगी कि कोई ऐसे सोच हमको दे कि हम सद्गुणों की राह पर हमेशा कायम चल सकें।
सद्गुण सुखदायी है सबसे पहले तो, और उसके साथ साथ सद्गुण का यूज, वो हमें संतुष्टता देता है, सेटिस्फेक्शन होता है। जैसे राजबेन ने भी कहा कि सोच तो आया लेकिन हमने क्या किया कि नहीं, नियम का पालन करना है, किया तो उसकी खुशी मिली उनको, और साथ साथ संतुष्टता भी होती है। और यदि हम इन नियमों का पालन ईमानदारी से नहीं करेंगे, मजबूरी से करते हैं, जैसे कहा डर के मारे करते हैं, मजबूरी से करते हैं, तो मैं यहाँ आई उसके पहले हमारी मीटिंग चल रही थी इन सेवाओं को और आगे बढ़ाने की, उसमें हमारे ई गिरीश भाई ने बहुत अच्छी बात बताई कि यदि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, कई बार होता है कि इतनी कॉस्ट लग जाएगी, दंड हमको सजा होगी, कईयों को होता है कोई बात नहीं, दे दो ना, छूट तो जाएंगे ना, नहीं ये भी सोच होती है। अभी वो भी लोग करते रहेंगे, गवर्नमेंट ने उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी कि गवर्नमेंट अभी धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट कर रही है कि हमें मजबूरी से भी उस नियमों का पालन करना पड़ेगा। वो अभी ऐसे गाड़ी बना रहे हैं कि जहां पर 60 की स्पीड हो, आप कितना भी एक्सेलेरेटर दो, लेकिन वो गाड़ी स्पीड इससे अधिक ले ही नहीं सकेगी, तो मजबूरी से करना पड़ेगा ना। तो ऐसे गवर्नमेंट को इस प्रकार की इम्प्रूवमेंट करनी तब पड़ रही है कि जब हम उस नियमों का पालन स्वेच्छा से, समझ से हम नहीं करते हैं। और इसीलिए इस विद्यालय में भी कहा जाता है कि समझ से कार्य करो, नहीं तो समय हमको लाचार मजबूर करके भी हमारे से करवाएगा। लेकिन सुख तो उसी में है, खुशी उसी में है कि हम समझ से उस नियमों का पालन करके चले।
तो गुणों से प्यार हमारे जीवन को सुखमय बनाता है, और कौन जीवन में सुख नहीं चाहता। तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो यात्रा के दौरान और अधिकतर जीवन रूपी यात्रा के दौरान भी कईयों को शिकायत होती कि हमको गुस्सा बहुत आता। तो हम जानना चाहेंगे कि अगर ऐसे हैं तो क्रोध करने का कारण क्या है। ऑप्शन वन, सबसे ज्यादा गुस्सा आपको तब आता जब कोई गलती करता है या झूठ बोलता है। ऑप्शन टू, जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तब गुस्सा आता है। ऑप्शन थ्री, जब अपनी पसंद का भोजन नहीं मिलता तब गुस्सा आ जाता है। या ऑप्शन फोर, कि जब अपने ही तन मन की बड़ी थकावट होती है तो क्योंकि हम खुद ही अपने तन मन से परेशान है, थकावट है, थके हारे हैं, इसीलिए हमको गुस्सा आता, तो हम देखेंगे कि हमारे क्रोध की वजह क्या है, और ताकि जब हम वजह देखें तो हम उसका निवारण कर पाए। और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि बहुत हाई परसेंटेज वोट्स जा रहे हैं। जो पहली पॉइंट थी कि क्रोध कब आता, कि जब कोई गलती करता या कोई झूठ बोलता, कहते कई लोग बोलते ये मुझसे सहन नहीं होता, ये चीज है तो फिर मैं भी बोलता हूँ, मैं भी सामना करता हूँ, मैं भी गुस्सा करता हूँ। और मैं समझती हूँ कि ये आवाज आपकी इस व्हील में हमको दिख रही है, इस पाई चार्ट में दिख रही है कि अधिकतर लोग, और अभी अपेक्षाएं पूरी नहीं होना, वो भी नजदीक नजदीक स्कोर ले रहा है, तन मन की थकावट भी नजदीक आ रहा है। चलिए फिलहाल जो सबसे हाईएस्ट रेट पर है, गलती करना किसी की और किसी का झूठ बोलना, हाँ ये वो गलत कर रहे हैं, ये वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्या क्रोध से उसका रिस्पॉन्ड करना, उसके रिस्पॉन्स में गुस्सा करना हमारे लिए राइट है? तो आप बताएंगे।
आपकी बात ये ठीक है कि कोई झूठ बोलता है या गलती करता है तभी गुस्सा आता है, लेकिन हम अपने आप को भी देखें, क्या मेरे जीवन में कभी कोई गलती नहीं होती है? अपनी और भी जांच करके देखें, कभी क्या मुझे अपनी गलती पर गुस्सा आया है? हमें दूसरों की गलती पर ही गुस्सा आता है, हमें अपनी गलती पर गुस्सा आया है वो हमें देखना चाहिए। जब मुझे अपनी गलती को हम माफ कर देते हैं, क्षमा दे देते हैं, या तो कोई ना कोई ऑप्शन निकाल देते हैं, ये वजह थी, इसके कारण गलती हुई, या तो परिस्थिति ऐसी थी, या वो व्यक्ति ऐसा था, ये चीज थी, वो चीज थी, बहुत सारे ऑप्शन हम ढूंढ लेते हैं और अपने आप को माफ कर देते हैं, उनके रीजन दे करके अपने आप को छुड़ा देते हैं। तो वही बात दूसरों के लिए भी सोचे, गलती की है ये बिल्कुल राइट है, लेकिन गलती की वजह क्या है ये भी तो हम सोचें। और कई बार वो रीजन का हमें पता चलता है तो हमें गुस्सा नहीं आता है, भई ये परिस्थिति, ये संयोग था कि जिसके कारण उन्होंने क्या की, ये गलती की है, तो क्षमा भाव आ सकेगा और हम उग्र नहीं होंगे, गुस्से में नहीं आएंगे। ऐसे ही झूठ बोलने की बात है, वो भी सेम है कि क्या हम अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते या नहीं भी बोलते हैं, दूसरे ने झूठ बोला, तो मैं ये सोचती हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए झूठ बोलने के संस्कार हैबिट उस व्यक्ति की है, और गुस्सा मुझे आ रहा है, नुकसान तो मैं अपने आप को कर रही हूँ ना, गुस्सा उससे फायदा होता है तो करें। हम सब ये जानते हैं कि गुस्से से नुकसान होता है, तो झूठ वो बोलता है और मानसिक स्थिति मेरी बिगड़ती है, भाषा व्यवहार ये मेरा बिगड़ता है, तो उनके संस्कार के वजह से मैं अपने संस्कार को क्यों बिगाड़ूं, या मैं अपनी हैबिट को क्यों बिगाड़ूं? हमारी दादी भी बहुत अच्छी बात कहती है कि जो सही चीज नहीं है वो व्यक्ति सामने वाला नहीं छोड़ता है, तो हम अपनी अच्छाई को छोड़ दें, और क्या गुस्सा करने से वो झूठ बोलना छोड़ देगा? क्या मेरे गुस्सा करने से जो झूठ है वो सच बोल देगा? ये भी तो सोचना चाहिए ना, वो सत्य नहीं भी मानेगा और मैं गुस्सा करती रहूंगी, मेरा नुकसान बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ फिगर बढ़ते जा रहे हैं ऐसे हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा ना, तो उससे कोई फायदा नहीं है। मुझे अपने संस्कारों को, अपनी हैबिट्स को मुझे चेंज करना है, जो इस विद्यालय के अंदर कहा जाता है स्व को बदलो, और स्व का परिवर्तन औरों को प्रेरणा देगा बदलने के लिए। इसलिए हमें गुस्सा न करके अपनी ओर देखना चाहिए।
दीदी कह रहे थे तो मुझे याद आता कि इस विद्यालय में हमने ये भी सीखा है, कई बार जब ये बात होती जैसे दीदी ने कहा दूसरे झूठ बोलते हैं, दूसरे गलत कर रहे हैं, तो हमको परमात्मा ये भी सिखाते हैं कि शायद हमारी दूर की नज़र तो बड़ी पावरफुल है लेकिन नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है, कि हम औरों की गलतियों को तो देख लेते हैं लेकिन हम अपनी गलतियों को नहीं देख रहे। इसीलिए भी हमें लगता कि मैं राइट हूँ और वो रॉन्ग है, मैं सही हूँ वो गलत है, और फिर वो कंपैशन नहीं बनता जहाँ पर हम उन बातों को समझ सके। लेकिन साथ साथ हमने देखा झूठ बोलने के अलावा भी जब रिजल्ट्स हमारे सामने आए तो दूसरे जो दो ऑप्शंस थे उसको भी काफी हाई परसेंटेज मिला। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, अपेक्षा भी जीवन की बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, हम किन किन से कितनी कितनी ना एक्सपेक्टेशंस बना लेते हैं और जब एक अपेक्षा भी पूरी नहीं होती तो उसका हमारा रिएक्शन क्रोध के रूप में होता। तो दीदी अपेक्षाओं के बारे में हम आपसे प्रकाश चाहेंगे।
हम औरों से अपेक्षाएं रखते हैं और अपेक्षा भी वहीं रखते हैं जहां हमारा संबंध होता है, प्यार होता है, अधिकार होता है, परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमको कर्मों की गति समझाई जाती है कि इस सृष्टि रंगमंच पर सभी एक्टर्स हैं और सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। अभी सामने वाले व्यक्ति से हमारा रिश्ता कोई भी हो, अधिकार कितना भी हो, परंतु अगर उस अपेक्षा को पूरा करने का उसका रोल नहीं है तो वो नहीं कर सकता है। वो आत्मा भी अपने रोल के वश में है। अभी हम अपेक्षा रखें और वो पूरी न कर सके तो फिर हमको गुस्सा आएगा, परंतु यहाँ हमको सिखाया जाता है कि लेने की भावना न रख करके हमको देने की भावना रखनी चाहिए। भारत के अंदर हम अनेक देवी देवताओं को याद करते हैं और भारत के अंदर ही देवताओं के नाम भी हम अपने ऊपर रखते हैं। देवी शब्द भारतवासियों के लिए ही गाया जाता है, तो देवी देवता का अर्थ ही है देने वाला। अगर हम देने की भावना ही रखेंगे, लेने की अपेक्षा नहीं रखेंगे, तो जरूरी है कि देने वाला जो दाता होता है उसको कई गुना होकर के सामने से मिलता है। और जब हम अपेक्षा रखते हैं तो आपने देखा होगा अगर एक दुकानदार से हम अपेक्षा रखें कि ये मुझे ज्यादा देवे लेकिन पेमेंट करने की मेरी क्षमता ज्यादा ना हो तो वहां पर भी तो कुछ नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि पेमेंट मुझे इतनी ही करनी है पर सामने से वस्तु मुझे ज्यादा मिले, तो संभव नहीं होता। वास्तव में ऐसे ही सृष्टि रंगमंच पर सभी आत्माओं का भी ऐसे ही है। अगर हमने किसी को दिया नहीं है तो हमको मिलना भी नहीं है, तो इसलिए अपेक्षा न रख करके अगर हम दाता बन करके देते जाएंगे तो अपने आप हमको कई गुना हो करके मिलेगा और क्रोध भी नहीं आएगा।
जो अपेक्षा की बात कही कि हम इच्छा रखते हैं किसी भी व्यक्ति से कोई वस्तु की या उनके बोल की या उनका अच्छा व्यवहार हो, लेकिन गुस्सा में आता है, लेकिन गुस्सा न आए उसके लिए अपेक्षा होती है, लेकिन अपेक्षा पूरी करने की उनमें कितनी क्षमता है ये समझ भी तो रखनी चाहिए ना, कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। उतनी रखो वो पूरी करेगा और आपको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन उसकी ताकत है नहीं और आप उतनी अपेक्षा उससे रखते हो वो लाइफ में कभी पूरी कर ही नहीं सकेगा। और मेरी नेचर में ऐसी बना लूं कि अपेक्षा पूरी न हो और गुस्सा, तो लॉन्ग लाइफ मेरे जीवन में गुस्सा बना ही रहेगा, फिर गुस्सा मुझे आता ही रहेगा। और ये समझ की कमी है हमारी कि उनकी शक्ति को नहीं देखते हैं और उससे अधिक हम मांग रखते हैं, तो कैसे पूरी होगी? गुस्सा करते रहो और कोई ऑप्शन उसके लिए है ही नहीं।
और साथ साथ एक और समस्या क्रोध के लिए थी कि तन मन की थकावट, और वैसे तो बोलने में आ जाता तन मन की थकावट, पर सोच रहे थे तन की थकावट की वजह से क्रोध एक अपना सब्जेक्ट है, और ये मन की थकावट क्या होती और मन की थकावट से क्रोध ये क्या होता और क्या इसका कोई उपाय है। तन की थकावट का उपाय तो नींद है, पर मन की थकावट के लिए क्या करें, क्या गुस्सा ही उसका उपाय है या कुछ और है? तो ये थकावट को थोड़ा दूर करने के लिए आप हमको थॉट्स दें।
जैसे तन की थकावट है वो तो रिलैक्स होकर के बैठो, लेट जाओ तो तन की थकावट दूर करते हैं, लेकिन कई मन एक साथ कई कार्य के लिए सोच रहा हो, या कई कार्य ऐसे हो कि जिसमें बहुत सोच उसमें चलाने पड़ते हो, तो उस समय पर मेंटली व्यक्ति थकता है, कोई राह नहीं मिल रही है, कोई दिशा नहीं मिल रही है, कोई सॉल्यूशन उसका नहीं मिल रहा है, और तब मेंटली थकते हैं। और बहुत सारे डिफरेंट कार्य सुबह से लेकर के करते रहे हो मेंटली, और मेंटली रेस्ट न मिला हो तो मन की थकावट, जैसे तन से लगातार काम करो थकता है, ऐसे मन भी तो कार्य करता है और वो लगातार करे तो थकता है। लेकिन बीच बीच में यहाँ जो स्पेशली आपको बुलाया है कि मेडिटेशन का अभ्यास, एक कुछ सेकंड भी, एक मिनट भी मन को हम शांत करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जैसे स्टॉप, तो उनसे मन की शांति, और वो शांत होना यहां बहुत अच्छा कहा जाए, साइलेंस में शक्ति है। मन को शांत करने से मन की एनर्जी बढ़ती है, उसकी क्षमता, उसका बल वो बढ़ता है, और थकते तब है, हमारी करने की कैपेसिटी नहीं और कर रहे हैं तो थकावट। बीच बीच में मेडिटेशन द्वारा, साइलेंस द्वारा हम अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाते जाते हैं, ताकत को बढ़ाते रहते हैं, फिर कितना भी कार्य कर लेते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि थक गए हैं, अपने आप को फ्रेश, रिफ्रेश फील करेंगे। लेकिन वो अभ्यास बीच बीच में हमें करना चाहिए। कईयों को देखा है बिजनेस या तो मेंटली वर्क करने वाले थोड़े थोड़े समय में बीच में थोड़ा दो घुट कॉफी पी लेते हैं, दो घुट चाय पी लेते हैं, कहते दो घुट चाय दे दो फिर हमारे एक भाई है जो ड्राइविंग करते हैं, तो वो कहते हैं कार चलाते हैं तो चाय उनको चाहिए ना, तो उनका कोड वर्ड है पिकअप दे दो, कि वो पीऊंगा तो मेरा कार्य करने की शक्ति क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो बीच बीच में समय चाय कॉफी का निकालते हैं ना, ऐसे ही बीच बीच में मन को साइलेंस में शांत कर देगा, ये भी समय निकाले। अभी देखो कुछ सेकंड भी इतने बड़े हॉल में हम सब चुप है तो भी शांति अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है। ऐसा अभ्यास ये हमारी मन की थकावट को दूर करता है।
और तन मन का तो गहरा कनेक्शन है ही, जहाँ मन लाइट है, रिफ्रेश है, तो वहाँ तन भी बहुत साथ देता है। और तन की थकावट के लिए नींद तो चाहिए, पर मन फ्रेश होने से तन भी बहुत अच्छे से साथ देता। और लास्ट जो मिनिमम परसेंटेज वाला उत्तर था क्रोध आने का कारण, तो कुछ लोग कह रहे थे कि पसंद का खाना न मिले तो गुस्सा आता। मैं आशा रखती हूँ शांतिवन में आके तो इस वजह से गुस्सा नहीं आया होगा, लेकिन फिर भी जो ये कह रहे हैं कि खाना न मिला पसंद का तो गुस्सा आ जाता है, तो दीदी थोड़ा सा टेस्ट बर्ड्स को कैसे हम शांत करें आप बताएं।
भोजन एक तो होता है तन पसंद, एक होता है मन पसंद। वैसे भी हमें तन पसंद खाना चाहिए, मन पसंद नहीं, क्योंकि आजकल सभी बीमारियों का कारण भी यही है कि मन पसंद ज्यादा हमको अच्छा लगता है, तन पसंद अच्छा नहीं लगता। छोटे छोटे बच्चों में भी देखते हैं। एक बार एक बच्ची हमारे पास आई तो मैं उसको प्रसाद के रूप में केला दे रही थी, तो उसने केला नहीं लिया। तो नहीं ले रही थी तो मैंने सोचा उसकी मम्मी ने सिखाया होगा, किसी से नहीं लेना होता है। मैंने कहा आप बोलो तो ये ले लेगी, तो कहती नहीं ये केला नहीं खाएगी। तो मैंने कहा क्यों नहीं खाएगी, क्या खाएगी फिर? कहती चॉकलेट खाएगी। केला उसके शरीर की जरूरत है पर चॉकलेट उसके मन की जरूरत है। तो जहां भी गुस्सा आता है वो वास्तव में हमारे तन के लिए आवश्यक होता है ऐसा नहीं है, वो हमारे मन की इच्छा होती है। और मन की इच्छा कई बार हमें तन के रोग देती है, उसमें हमें और भी ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए जिस घड़ी जो मिले उसको हमें प्रभु प्रसाद समझ करके प्यार से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई समय ऐसा आए जो आज हमको मिल रहा है वो शायद उस दिन कोई दिन न मिलना हो। इसलिए आज भी हम उसको ऐसे स्वीकार करें जैसे हमारे पूर्वज कहते थे कि अन्न देवता होता है। तो इसलिए देवता को कैसे स्वीकार किया जाता है, उसको कैसे नमन किया जाता है, इसलिए जो भोजन जिस घड़ी हमको मिलता है अगर हमारे वो शरीर की जरूरत पूरी करता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, ऐसे हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए तब हमारा ये खान पान पर हमको गुस्सा नहीं आएगा।
तो जबान के लिए व्यवहार को हम बहुत अच्छा बना के रखें। ना पसंद खाना लेकिन भूख लगी है तो खाना तो पड़ेगा नहीं, और गुस्से में खाएंगे तो वो कितने हमारे हेल्थ को उपयोगी होगा ये भी तो बात है। कहते हैं ना खाना भी बहुत खुशी से, प्यार से, बहुत शांति से, धीरज से खाओ, और अच्छे से अच्छा मन पसंद खाना भी हमारे होता है। लेकिन भोजन के समय पर कोई कॉल ऐसा आ जाता है या तो हमारे सामने वाली व्यक्ति की कोई बोल और व्यवहार वो मुझे पसंद नहीं है और वो हुआ, तो भी मन पसंद खाना होते हुए भी तो गुस्सा आता है ना कि नहीं आता है? तो भी गुस्सा आता है, खाना तो मन पसंद है लेकिन बाकी चीजें मन पसंद नहीं है मेरे, तो भी हम गुस्सा कर लेते हैं। और गुस्से में आकर के मन पसंद खाना या तो तन पसंद खाना जो भी खाएंगे वो हमारे हेल्थ के लिए उपयोगी नहीं रहेगा। हेल्थ तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी, लेकिन गुस्सा करने से हमारा मन भी अस्वस्थ हो जाएगा। मन का स्वास्थ्य भी हमारा तन के साथ साथ मन का स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। इसलिए खुशी से खाना चाहिए, प्यार से खाना चाहिए।
तो ग्रैटिट्यूड कि भोजन मिलना ये भी एक भाग्य है, क्योंकि कईयों को दिन की दो रोटी भी कई बार नसीब नहीं होती। और जो भोजन हमारे पास आया है वो धरती माँ की देन है, धरती माँ से हमने वो लिया है, और फिर कईयों ने उस पर बहुत मेहनत करके हमारे घर तक पहुंचाया है, घर पर किसी ने बहुत प्यार से मेहनत करके उसको बनाया है। जब हम उन बातों को सोचते हैं और उस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखते हैं तो वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग शायद स्वाद में कोई 19-20 हो भी जाए, लेकिन वो ग्रैटिट्यूड की फीलिंग हमें इतना भरपूर रख सकती है कि हमें उस समय पर फिर वो क्रोध नहीं लेकिन कृतज्ञता के भाव मन में सहज जागते हैं। तो भोजन के प्रति, धरती माँ के प्रति, और साथ साथ ये सत्र कंक्लूड करते हुए हमारी दोनों बहनों के प्रति भी हम बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं।
बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन के अनुभवों से और ज्ञान की समझ से आपने इस सत्र को रूप दिया और आप सभी ने भी बहुत ही सच्चाई से बहुत ही एक्टिव होकर अपनी राय बताई है, अपनी बातें हमारे सामने रखी है जिससे हम आपको वो दे पाएं जो आप चाहते हैं। इसीलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
आबाद किए जा परम पिता को।